तभी टैक्सी उनके घर के सामने आकर रुक गई। दोनों नीचे उतरे और साथ ही बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए। इनारा का फोन अब भी ज्ञान कपूर के हाथ में था। ज्ञान आगे आगे चल रहा था, नज़र फोन की स्क्रीन पर टिकी हुई। लिफ्ट बंद थी, इसलिए दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। इनारा ठीक उसके पीछे थी, चुप सहमी हुई। सीढ़ियां चढ़ते हुए ज्ञान की उंगलियां फिर रुकीं एक मैसेज पर। टीम के मेंबर इनारा को ज्ञान कपूर से शादी करने की सलाह दे रहे थे। उस पल ज्ञान कपूर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इनारा ने वो मुस्कान देख ली, लेकिन ज्ञान खुद अपने चेहरे की वो मुस्कान नहीं देख सका। वो मुस्कान जिसमें अहंकार भी था और स्वामित्व का पहला एहसास भी। सीढ़ियां खत्म हुई, दोनों बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुके थे। ज्ञान ने बिना कुछ कहे फोन इनारा की तरफ बढ़ा दिया। वैसे इनारा बेदी, उसकी आवाज़ ठंडी थी। इस तरह के मैसेज आगे से नहीं होने चाहिए, समझी? जी, इनारा ने सिर झुका लिया। मुझे अभी सोना है, उसने धीमे से कहा। ज्ञान ने जैसे कुछ सोचा फिर पूछा, तो तुम क्या पियोगी, दूध या कुछ और? दूध, इनारा ने जवाब दिया। तो मुझे भी गर्म दूध चाहिए, ज्ञान ने कहा। इनारा ने बस सिर हिलाया और बिना पीछे देखे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके कदम तेज थे, दिल भारी था। वो गुस्से में था और वो साफ महसूस कर सकती थी कि वो आदमी हालात को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा था, और वो कंट्रोल में नहीं रहना चाहती थी। लेकिन अभी उसे बोलना नहीं आता था, अपने लिए खड़ा होना नहीं आता था। ये बस शुरुआत थी, आगे जिंदगी में बहुत कुछ होना अभी बाकी था। वो वापस घर आ चुके थे। दोनों अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन कोई भी चैन से बैठ नहीं पाया। आर्यन का मन बार बार कहीं अटका था। कमरे की खामोशी में सिर्फ उसके खुद के विचार ही उसकी कंपनी थे, और यही खामोशी आर्यन को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही थी। आर्यन अभी बिस्तर पर ही था, आंखें बंद थीं, लेकिन नींद सतही थी, जैसे दिमाग किसी आने वाले खतरे को पहले ही भांप चुका हो। फोन की हल्की सी वाइब्रेशन हुई। आर्यन ने स्क्रीन देखे बिना कहा, हाँ जमाल, बोलो। दूसरी तरफ आवाज थोड़ी दबा कर आई, सर कुछ खबर मिली है? पूरी? आर्यन ने करवट बदलते हुए पूछा। पूरी तो नहीं, जमाल ने कहा, लेकिन इतना पक्का है कि वे लोग कंपनी में बड़ी गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्यन की आंखें खुल गईं। ठीक, उसने शांत स्वर में कहा, अपडेट देते रहो। जमाल थोड़ा रुका, फिर बोला, असल बात यह है कि वे लोग मुझे अभी अपने प्लान में शामिल नहीं कर रहे। विक्रांत की टीम मुझे सिर्फ एक मैकेनिक समझती है, लेकिन मैं उनके काफी नजदीक पहुंच चुका हूँ। बहुत जल्दी अंदर की पूरी खबर मिलेगी। आर्यन ने बस इतना कहा, ख्याल रखना, कॉल कट चुका था। उधर शहर के दूसरी तरफ एक बंद कमरे में विक्रांत अपने आदमियों के साथ बैठा था। टेबल पर फैले नक्शे, ट्रक रूट्स और फाइलें किसी जंग की तैयारी का ऐलान कर रही थीं। विक्रांत की उंगली नक्शे पर घूमी। कल, वो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, आर्यन राजवंश का नाम पूरे देश में गूंजना चाहिए, लेकिन गलत वजह से। उसने आगे झुककर कहा, जहां जहां आर्यन की कंपनी के ट्रक खड़े होते हैं, वहां हमारे ट्रक खड़े होंगे। एक आदमी ने पूछा, और ट्रक खराब कैसे करेंगे? विक्रांत हंसा, नेटवर्क चेंज करने पड़ेंगे। ऐसे हालात बनाएंगे कि उसके ट्रक एक एक करके बंद होते जाएं। और हमारे ट्रकों में, उसकी आंखों में चमक आ गई, पहले से नशे का सामान होगा। जीवन, उसका असिस्टेंट थोड़ा झिझका, लेकिन सर इतना बड़ा खेल, अगर पकड़े गए तो? पकड़े जाएंगे, विक्रांत ने ठहाका लगाया, लेकिन आर्यन के नाम पर। वो कुर्सी से उठा, सुबह तक न्यूज चैनल यही चलाएंगे, आर्यन राजवंश नशीली पदार्थों की स्मगलिंग में गिरफ्तार। कमरे में ठहाके गूंज उठे, लेकिन जीवन ने फिर सवाल उठाया, इतने सारे ट्रक एक साथ खराब कैसे होंगे? विक्रांत ने पलट कर कहा, जो नए लड़के हैं उन्हें काम पर लगाओ, पुराने भरोसेमंद लोगों को दूर रखो। वो जानता था नए लड़के सवाल नहीं पूछते। उसी लिस्ट में एक नाम था, जमाल, जिसे विक्रांत सिर्फ एक मैकेनिक समझ रहा था, जिसे आर्यन अपनी सबसे मजबूत कड़ी मानता था। रात गहरी हो रही थी, एक तरफ साजिश बुनी जा रही थी, दूसरी तरफ सच्चाई चुपचाप उसी साजिश के बीच अपनी जगह बना रही थी। कल का दिन सिर्फ आर्यन की कंपनी का नहीं, उसकी जिंदगी का इम्तिहान होने वाला था, और खेल अब शुरू हो चुका था। जोया और अयान दोनों होटल के कमरे में थे। माहौल गंभीर था, क्योंकि अयान परेशान था और सवालों की बारिश रोक नहीं पा रहा था। जोया, अयान ने अचानक कहा, अरहान के बारे में मुझे साफ साफ बताओ, इतना क्यों छुपाया जा रहा है? जोया ने घड़ी की ओर देखा, फिर धीरे धीरे बोली, मैंने वही बताया जो मुझे पता था। कनिका? हाँ, उसका नाम मैंने बताया था, बुआ की लड़की। अयान की नजरें तीखी थीं। ना, ये तो हिंदू नाम है, लेकिन अरहान मुसलमान था, तो आखिर क्या चल रहा है, मुझे साफ साफ समझाओ। जोया ने कुछ पल चुप रहकर कहा, असल में मैंने किसी से पूरा विवरण नहीं पूछा, लेकिन जो कुछ पता था वही मैंने बताया। जोया ने सांस ली, देखो, मैं पूरी कहानी नहीं जानती। मुझे भी पता नहीं था कि अरहान किसी अनाथ आश्रम में है। इस बारे में किसी ने सीधे कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर चुप्पी के बाद जोया ने सुझाव दिया, लेकिन हमने प्रबंधक से बात की थी और मुझे लगता है कि उस अनाथ आश्रम की जो कमेटी है शायद वही हमें पूरी जानकारी दे सके। अयान ने धीरे धीरे सिर हिलाया। ठीक है, तो हम उसी कमेटी से संपर्क करेंगे। सब कुछ साफ करना जरूरी है। जोया ने हल्की राहत की सांस ली। मैं इसकी कमेटी के बारे में पता करती हूँ, फिर हम आगे देखेंगे। कमरा अब भी शांत था, लेकिन सवालों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था और दोनों जानते थे सच तक पहुंचने की राह अभी लंबी थी। रात हो चुकी थी। खाना खाने के बाद सारा और इमरान दोनों अपने अपने कमरों में लौट चुके थे। सारा ने जल्दी से कपड़े बदले और थोड़ा आराम किया। इमरान ने अपने लैपटॉप को उठाया और सोफे पर बैठकर काम में खो गया। सारा ने इमरान की तरफ देखा और थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, तुमने बात क्यों नहीं की कि काउच क्यों नहीं हटवाई? इमरान ने बिना घबराए सिर उठाया। सारा सोफे पर बैठ गई। वो दोनों अलग अलग सिंगल सोफे पर बैठे थे, लेकिन दूरी के बावजूद माहौल में एक अजीब सी नजदीकी थी। इमरान ने लैपटॉप की स्क्रीन से आंखें हटाकर उसे देखा। हाँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते। मैंने कहा था इसे हटाने के लिए, सारा ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। जहां पर तुम्हारे सोने के लिए एक नया सोफा चाहिए, इमरान ने धीमे स्वर में कहा। बीबी, कितने दिनों से तुम यही बातें कर रही हो, धकती नहीं हो? इतना कहते हुए उसने लैपटॉप साइड में रखा और पूरी तरह जोया की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में हल्की गंभीरता और मजाक का मिला जुला एहसास था। तुम मुझे एक बात बताओ, सारा ने कहा, इतना काम के प्रति सीरियस होने का दिखावा करने के बावजूद तुम्हें कुछ आता भी है या सिर्फ दिखावा है? इमरान ने हल्का सा हंसते हुए सिर हिलाया। बीबी, तुम्हें पता है तुम्हारा शौहर कितना बड़ा बिजनेस संभालता है। डैड तो बस राजनीति में लगे रहते हैं और मुझे उनकी राजनीति में भी मदद करनी पड़ती है, समझ रही हो? सारा ने उसकी ओर गंभीर नजरों से देखा। हाँ, जानती हूँ। रात का समय था और ज्ञान कपूर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, न्यारा का मैसेज। चाहे मजाक में ही क्यों ना हो, सभी लोग न्यारा को सलाह दे रहे थे कि वो ज्ञान कपूर से शादी करे और उसे अपने जीवन में कंट्रोल में रखे। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी आज वही नाटक किया, ज्ञान को शादी कर लेने की सलाह दी। ज्ञान सोच रहा था कि न्यारा में दिलचस्पी है या नहीं। उसके दिमाग में ख्याल आए कि वो कैसे न्यारा के बारे में सोच रहा था, कैसे उसकी आंखें, उसके होंठ, उसकी बातें उसे खोने पर मजबूर कर रही थी। ये सब ठीक नहीं लग रहा था। उसने तुरंत उठकर बैठने का निर्णय लिया। असल में आज तक वो किसी लड़की के करीब नहीं रहा था। वो ये भी महसूस कर रहा था कि जब किसी के साथ हमें रहना पड़ता है और हम उसी के हाथ का खाना खाते हैं तो धीरे धीरे हम उस व्यक्ति को अच्छा लगने लगते हैं। लेकिन अब न्यारा के साथ ऐसा कुछ नहीं था। उसे उसके हाथ का खाना खाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और वोट देना याद रखें।